समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को-होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड डे टू एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता सिंह। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार कनेक्टिविटी, विज्ञान, नवाचार और स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। श्री मोदी ने केरल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया।
India to launch its own mobile brands in the next 18 months, says Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav.
दावोस में भारत और यूरोपीय संघ ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन और हरित विमानन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
रशिया, यूक्रेन एंड यूएस टू होल्ड ट्रायलैटरल टॉक्स इन अबू धाबी टू एंड वॉर इन यूक्रेन।
पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में लंबे समय से चल रहा शुष्क मौसम समाप्त। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश तथा हिमपात।
एंड इंडियन शटलर्स पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन टू कम्पीट इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द इंडोनेशिया मास्टर्स इन जकार्ता। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Republic Day Parade Rehearsal and Basant Panchami. So to start off with the first topic, that is the Republic Day Parade Rehearsal, Akarshita. The heart of the nation was beating a little louder today. Kartavya Path came alive today as a full dress rehearsal of the Republic Day Parade unfolded this morning, starting at 10:30 a.m. from Vijay Chowk and rolling all the way to the Red Fort.
और क्या अद्भुत नजारा था अभिषेक। ढोल की गूंज सुनाई दे रही थी, ताल की आवाज एकदम लयबद्ध तरीके से और कानों में गूंजता वो गीत, ए वतन मेरे वतन।
Yes, and as India gears up for the 77th Republic Day 2026, today's rehearsal felt like a powerful teaser of what's coming next.
परेड के पूर्वाभ्यास में सैनिकों, कलाकारों, लोक परंपराओं और इतिहास को एक साथ सम्मिलित कर देश की आत्मा को याद किया गया।
Marching contingents of the Indian Army, Navy, Air Force, Coast Guard and CAPFs moved with pride and precision.
सशस्त्र बलों की विभिन्न टुकड़ियां और राज्यों की झांकियां विविध शक्तियों और सांस्कृतिक समावेशता की झलक प्रस्तुत कर रही थी।
And it's a bit like walking through India in one morning, that too in a few hours.
इस वर्ष की समारोह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड 2026 का विषय है वंदे मातरम के 150 वर्ष।
टैब्लो बेस्ड ऑन स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम एंड समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत विल ब्यूटिफुली कनेक्ट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विद इट्स फ्यूचर एम्बिशंस।
इस वर्ष गणतंत्र दिवस की झांकियां भारत की एक जीवंत और सजीव कहानी बयां कर रही है। पंचायती राज की झांकी की बात करें अभिषेक, तो ये स्वामित्व योजना का जश्न मनाती है जहां एक छोटा सा संपत्ति कार्ड बड़ी जीवन बदल देता है। एक किसान का भूमि विवाद सुलझ जाता है, एक महिला को बैंक से लोन मिल जाता है और एक परिवार अंत में अपने असली घर में चैन की नींद सो सकता है।
Yes, amazing, isn't it, Akarshita? That's like dignity on wheels, whereas information and broadcasting brings Bharat Gatha alive in its tableau. From a guru teaching under a peepal tree to Lord Ganesh writing the Mahabharata, the films, satellites and smartphones, this tableau will showcase journey of India's stories from spoken word to global screens.
और DRDO अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करेगा. हाइपरसोनिक मिसाइलें, पनडुब्बियां, अर्जुन टैंक और ब्रह्मोस हमें ये याद दिलाते हैं कि हर रोज अपने देश में सुरक्षित रहकर चैन की नींद सोना शायद इनके बिना कभी संभव नहीं था.
The Power Ministry's tableau, Prakash Ganga, glows with smart meters, rooftop solar, EV charging and a grid connecting millions like lights switching on across villages.
और हम बात कर रहे हैं जो बहुत ढेर सारी झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं परेड में उसकी बात कर रहे हैं, तो हम आयुष मंत्रालय की अगर झांकी की बात करें तो अभिषेकीय स्वास्थ्य के माध्यम से भारत के राष्ट्र निर्माण के सफर को प्रदर्शित करेगा और आयुष प्राचीन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन का संयोजक करके इस चक्र को पूरा करता है जिससे लोगों को तनाव, असंतुलन और मानसिक थकान से लड़ने में मदद मिलती है. और कहीं ना कहीं ये जितनी भी झांकियां हैं वो हमारा रूबरू कराती हैं हमारी वर्तमान से, जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको हम कैसे सुलझा सकते हैं. अभिषेक,
एब्सोल्युटली. लेट्स आल्सो आकर्षिता, लेट्स टॉक अबाउट द चीफ गेस्ट्स दिस ईयर. एंड दिस ईयर्स चीफ गेस्ट रिफ्लेक्ट इंडियाज ग्रोइंग ग्लोबल पार्टनरशिप्स. द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन विल ग्रेस द ओकेजन.
17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 13 मंत्रालयों और विभागों की 30 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी जिनमें लगभग 2500 कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे. साथ ही भारतीय सेना की 7 परेड टुकड़ियां भी शामिल होंगी जिनमें जानवरों की बहुचर्चित टुकड़ी भी होगी जिसमें आप ऊंट और हाथी और बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें होती है. हमेशा परेड में कुछ ऐसे आते हैं जो हम देखते हैं कि कोई जो है ऊंट है वो सलामी दे रहा है. ये भी काफी अपने आप में रोचक होता है कि उनके अंदर भी एक देशभक्ति की भावना हो सकती है.
एब्सोल्युटली. एंड डू यू नो दैट द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड इन 1950 वाज हेल्ड एट इरविन स्टेडियम, नाउ नेशनल स्टेडियम, नॉट राजपथ.
1955 में परेड को राजपथ पर स्थानांतरित कर दिया गया और आज हम इसे गर्व से कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं. एक ऐसा नाम जो हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है. एक छोटे से झंडे को लहराता हुआ कोई स्कूली बच्चा या फिर सलामी देता हुआ कोई सीधा खड़ा हुआ अनुभवी सैनिक, ये परेड सभी के लिए है.
Yes, and as the final beats fade and the formations disperse, one feeling stays behind: pride. Pride in where we come from, pride in how far we have come, and confidence is where we are headed.
और अभिषेक, जब 26 जनवरी को हम इतनी ढेर सारी तैयारियों के बाद जब वो परेड देखेंगे तो कहीं ना कहीं 125 करोड़ भारतीयों, 140 करोड़ भारतीयों के मन में वो जो परेड है उसकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं और जो भी चीजें हैं वो बस जाएंगी.
Absolutely. Yes, and now we move on to our second topic in our Dateline section, that is Basant Panchami. Yes, and the festival of Basant Panchami and Saraswati Puja have been celebrated in different parts of the country. Basant Panchami marks the gentle arrival of spring and the cold slowly fades, days become brighter and nature begins to smile again.
और अभिषेक, आज के दिन पीला रंग हर जगह दिखाई देता है. पीले कपड़े, खेतों में सरसों के पीले फूल और आकाश में पतंगे और मिठाइयां, सजावट की वस्तुएं जो खुशी और आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है और भारत की विविधता को एकता में दर्शाने वाला ये त्योहार देश की सबसे रंगीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहारों में से एक है. ये वसंत ऋतु का स्वागत करने और देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए मनाया जाता है और ये ज्ञान, बुद्धि और नई शुरुआत का सम्मान करने वाला भी त्योहार है. और अगर अभिषेक बात करें हम बसंत पंचमी की तो इससे काफी खासा जुड़ाव रहा है हमारा क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ही बहुत ढेर सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे पूजा होती है क्योंकि एक ज्ञान की देवी सरस्वती को माना जाता है. तो कहीं ना कहीं वो हमें ज्ञान देती हैं, वो नॉलेज देती हैं जिससे हम अपने कंट्री को, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं.
एब्सोल्युटली. एंड दिस फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती, द गॉडेस ऑफ नॉलेज, म्यूजिक एंड लर्निंग. स्टूडेंट्स प्लेस देयर बुक्स नियर हर आइडल एंड प्रे फॉर विजडम एंड सक्सेस.
कहीं लोग पतंग उड़ाकर, कहीं पीले वस्त्र पहनकर, तो कहीं लोक गीतों के माध्यम से लोग ये त्योहार मनाते हैं. घरों में केसरिया रंग के मीठे चावल बनाए जाते हैं और ये बसंत का स्वागत करने और वसंत की सुंदरता और कृषि समृद्ध का जश्न मनाने का एक प्रतीकात्मक संकेत है। इस त्योहार को अच्छी फसल का संकेत भी माना जाता है और अगर हिंदू नववर्ष की बात करें अभिषेक, तो आज से ही हमारा नववर्ष भी शुरू होता है।
एब्सोल्युटली, एंड डिलीशियस येलो डिशेस लाइक केसर हलवा and khichdi are prepared and shared with loved ones. Basant Panchami teaches us that learning is important and growth takes time. And let me tell you, Akarshita, that I did indeed have khichdi before coming for work today.
तो जिस प्रकार वसंत ऋतु शांतिपूर्वक और खूबसूरती से आती है, उसी प्रकार ये त्योहार हमें सकारात्मक और विश्वास के साथ बदलाव का स्वागत करने की याद दिलाता है और कहीं ना कहीं आज एक नए वर्ष की शुरुआत है तो पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ने का भी संकेत है। तो इसी के साथ ही हमारे सभी श्रोताओं को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं
एंड ऑफ कोर्स हैप्पी सरस्वती पूजा।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। और अभिषेक, आजकल हम देख रहे हैं कि जो गांव में सबसे बड़ी समस्या है, या कह सकते हैं कि राज्यों में, कि जो रोजगार के लिए लोग अपने घरों को छोड़कर बड़े शहरों में जो है चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सभ्यता संस्कृति से बहुत थोड़ा टूटा हुआ महसूस करते हैं। पर इसी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है उत्तराखंड राज्य, जहां पे राज्य सरकार जो है काफी जो है एफर्ट्स लगा रही है कि लोग वहीं पे रहकर उनको रोजगार मिले। तो उत्तराखंड के पहाड़ों की सबसे बड़ी पीड़ा रही है पलायन। रोजगार की तलाश में गांव खाली होते गए और परंपराएं धीरे धीरे यादों में सिमटती चली गई। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। उत्तराखंड में विकास का एक ऐसा मॉडल सामने आ रहा है जहां लोगों को रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ने की को मजबूर नहीं है और बल्कि अपनी ही जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ने का उन्हें अवसर मिल रहा है। आज की ये कहानी उसी बदलाव की है जहां सदियों पुरानी लोक कला ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, युवाओं को गांव से जोड़े रखा है और पलायन पर लगाम लगाने का काम भी किया है। ये कहानी है कुमाऊं की पारंपरिक ईंपड़ कला की। क्या है ईंपड़ कला और कैसे ये पलायन को रोकने में मददगार साबित हो रही है, आइए जानते हैं हमारी क्षेत्रीय संवाददाता साक्षी सिंह से।
पीढ़ियों से ईंपड़ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में घर की मिट्टी की दीवारों और चौखटों पर बनाई जाती रही है। चावल के घोल और प्राकृतिक रंगों से बनी ये ज्यामितीय आकृतियां त्योहारों, विवाह, जन्म और पूजा पाठ का हिस्सा रही हैं। लेकिन समय के साथ ये कला घरेलू परंपरा तक सीमित होती चली गई और एक दौर ऐसा भी आया जब इसके लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन हाल के वर्षों में तस्वीर बदली। राज्य भर में महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय कारीगरों ने ईंपड़ को नए रूप में अपनाया है। अब ये कला केवल दीवारों तक सीमित नहीं बल्कि कैनवस, वस्त्रों, डायरी, वॉल पैनल और डिजिटल डिजाइनों में भी दिखाई देने लगी है। सरकारी सहयोग और सांस्कृतिक संस्थानों की मदद से पारंपरिक डिजाइनों का दस्तावेजीकरण हुआ है, नई पीढ़ी को प्रशिक्षण मिला और इन उत्पादों को बाजार से जोड़ा गया। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर पड़ा ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी पर। जो महिलाएं पहले सीमित आमदनी पर निर्भर थी, वे अब ईंपड़ कला के जरिए कार्यशालाएं चला रही हैं, प्रदर्शनियों में हिस्सा ले रही हैं और हस्तनिर्मित उत्पादों से नियमित आय अर्जित कर रही हैं।
नमस्कार, मेरा नाम ज्योति जोशी है और मैं उत्तराखंड की एक लोक कलाकार हूँ। लोक कला ईंपड़ को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 6-7 सालों से अपना छोटा सा प्रयास कर रही हूँ और बहुत सारी जगहों पे मैंने हमारी लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए वर्कशॉप भी आयोजित की है और बहुत सारे विभागों में भी मैंने अपनी लोक कला आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जैसे विधानसभा में और राष्ट्रपति निकेतन का जो शुभारंभ भी किया गया था तो वहाँ पे भी मैंने हमारी लोक कला ईंपड़ को बनाया है और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी लोक कला जो है वो सभी के द्वारा पसंद करी जाती है और देश विदेशों तक पहुंच रही है।
साल 2021 में ईंपड़ कला को मिले GI टैग इस यात्रा का अहम मोड़ साबित हुआ है। उत्तराखंड की ये कहानी देश को ये संदेश देती है कि विकास और परंपरा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ईंपड़ आज सिर्फ एक कला नहीं बल्कि महिला नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और जड़ों से जुड़े विकास की मिसाल है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
Yes, sir, a proud moment for Sikkim Police as it has been conferred with the prestigious President's Police Kala, the highest honor for any police force in the country. And the award announced by the Minister of Home Affairs on 16 January recognizes the force's outstanding service, professionalism and unwavering commitment to the nation.
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्किम अक्षय सचदेवा सेड द ऑनर रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ बोथ सर्विंग एंड रिटायर्ड पुलिस पर्सनल. ही इन्फॉर्म्ड दैट सिंस इंडिपेंडेंस सिक्किम हैज बिकम द 15th स्टेट इन इंडिया टू रिसीव द प्रेस्टिजियस पुलिस कॉलर ऑल्सो नोन एज द निशान सिम्बोलाइजिंग ब्रेवरी डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन.
So it's a matter of great honor and pride for Sikkim Police. There are various parameters on the basis of which Sikkim Police has got this award. As you all know, Sikkim is one of the most peaceful states in the country. Maintenance of law and order by the Sikkim Police, maintenance of public order is one of the important parameters. Prevention and detection of crime, efficient traffic management, internal security, cleanliness of the entire state, public and tourist friendly nature of Sikkim Police are some of the parameters on which they have assessed us. And we are very proud to say that we are the 15th state in the country. Only 14 states since 1947 have got this award, and very few states have got this award during the first 50 years, that is from 47 till 2000.
The DGP highlighted that Sikkim Police is known as a peaceful and people-friendly force, and also credited citizens of the state for their respect towards law and order. Following the award, a new ceremonial collar will be prepared, which will be formally presented by the President of India, the Prime Minister or the Union Home Minister during a special ceremony. With Moinak Chatterjee, Diliram Dulal, Akashvani News, Gangtok for Parikrama.
In Tamil Nadu, the Forest Department this year will conduct the first ever raptor assessment in the state from the 31st of this month to February 1st. The survey has been carried out in collaboration with the Advanced Institute for Wildlife Conservation through the Tamil Nadu Raptor Research Foundation, and we have a report.
Raptors, including kites, eagles, hawks, falcons and owls, play a key ecological role as apex predators and scavengers, helping regulate prey populations and maintain balance in ecosystems. Chief Wildlife Warden Rakesh Kumar Dogra has said that the survey would help build a scientific baseline for raptor conservation in the state. He said that they are the key bioindicators of environmental health. A systematic assessment will enable the government to identify priority landscapes, threats and hotspots, and strengthen long-term monitoring across ecosystems. A decline in the numbers of predators and scavengers could trigger changes in prey populations, disease spread, and broader impacts linked to ecosystem imbalance. The entire state has been divided into grid blocks of roughly 32 square kilometers, with 4,068 blocks forming a sampling frame. Around 1/10 of the landscape is aimed to be assessed during the exercise, covering 411 blocks in all. The two-day protocol includes both diurnal and nocturnal raptors. The state hosts over 65 raptor species across forests, hill logs, agricultural fields, wetlands, coastal areas, dump yards and other hotspots. Species to be recorded include the black kite, Eurasian kestrel, shikra, crested goshawk and changeable hawk eagle, apart from key scavengers such as the Egyptian vultures. Teams will use binoculars, data sheets, mobile mapping tools and track recording applications to ensure standardized reporting across divisions. Joy, Akashvani News, reporting for Parikrama from Chennai.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मुकाबला आज शाम 7 बजे से रायपुर में खेला जाएगा. पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया था. 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है.
In badminton, India's challenge ended at the Indonesia Masters Badminton Tournament today after PV Sindhu and Lakshya Sen suffered straight game defeats in the singles quarterfinals in Jakarta today. Two-time Olympic medalist Sindhu lost 13-21, 17-21 to top seed and world number 4 Chen Yufei of China in 42 minutes. And in the men's singles, Lakshya, our 2021 World Championship bronze medalist, was beaten 18-21, 20-22 by Thailand's P. Thirarat Sakul in the 46-minute contest. And earlier, Kidambi Srikanth and Anmol Kharb exited the men's and the women's singles events respectively, while the men's doubles pair of Hariharan, Amsa Karunan and M.R. Arjun lost in the pre-quarterfinals. And India had no representation in the women's doubles, with two pairs eliminated in the first round. And moving on to some business news. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, shed nearly 1% today amid selling across all sectors. Markets opened on a positive note but soon paired the early gains, slipping into negative territory. The sell-off intensified in the afternoon session amid profit booking, and both indices eventually settled lower ahead of a long weekend. The Sensex fell 770 points to close at 81,538, while the Nifty slid 241 points to settle at 25,049. In the forex market today, the rupee depreciated by 33 paise to trade at a record low of 91 rupees and 95 paise against the US dollar a short while ago.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23rd January 1897 इन कटक। The day is celebrated as the Parakram Divas.
To fulfill his parents' wishes, he appeared for the Indian Civil Service competitive examination and came out fourth in order of merit. However, he was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre and left his civil services training midway to return to India in 1921.
Under the influence of Mahatma Gandhi, he joined the freedom struggle and started working under the guidance of Deshbandhu Chittaranjan Das. When the civil disobedience movement was started in 1930, Netaji was already in detention for his associations with a revolutionary group, the Bengal Volunteers. Nevertheless, he was elected mayor of Calcutta while in prison.
He was released and then rearrested several times before being finally released on medical grounds and allowed to proceed to Europe. During the mid-1930s, Subhash Chandra Bose travelled to Europe, visiting Indian students and European politicians to gather support for the Indian cause. During this period, he also researched and wrote the book, The Indian Struggle. Although it was published in London in 1935, the British government banned the book in India out of fears that it would encourage unrest.
Defying the ban on his entry to India, Netaji returned to India in 1936 and was arrested and jailed again for a year. After the general elections of 1937, Congress came to power in seven states and Subhash Chandra Bose was released. He was elected president of the Haripura Congress session in 1938, and during his term, he set up a national planning committee.
At the Tripuri Congress session in 1939, Subhash Chandra Bose was re-elected, defeating Pattabhi Sitaramaiah. He brought a resolution to give the British 6 months to leave India, failing which there would be a revolt. After opposition to his stand, he resigned from the post of President of Indian National Congress and formed a progressive group known as Forward Bloc.
आज पुण्यतिथि है भारत की प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक नरेंद्र मोहन सेन की।
मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी।
बचपन में इन्हें विख्यात क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के नेता पुलन बिहारी दास के घर पर पढ़ने का अवसर मिला और यहीं से उनके अंदर देशभक्त की भावना जगी। अपने साहसपूर्ण व्यवहार और कठिनतम कार्यों में आगे रहने से नरेंद्र मोहन सेन को समिति में प्रमुखता मिली और उनका घर क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। वर्ष 1909 में अंग्रेज सरकार द्वारा समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। समिति के सदस्यों पर ढाका षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला, अनेक लोगों को सजाएं हुई। इसमें नरेंद्र मोहन सेन पुलिस के हाथ नहीं आए और वे गुप्त रूप से समिति की गतिविधियां चलाते रहे। नरेंद्र मोहन सेन ने समिति के काम को आगे बढ़ाया और समिति की शाखाएं असम, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक खोली। इन्होंने 1911 में क्रांतिकारियों को रूस, जर्मनी और अन्य देशों में भेजने की योजना भी बनाई।
सल्वाडोर डाली पास्ड ऑन दिस डे इन 1989। ही वाज अ स्पैनिश सरियलिस्ट आर्टिस्ट रिनाउंड फॉर हिज टेक्निकल स्किल, प्रिसाइज ड्राफ्ट्समैनशिप एंड द स्ट्राइकिंग एंड बिजार इमेजेस इन हिज वर्क। He was a Spanish artist and filmmaker who was part of the Surrealist group in his early career and continued to build on the movement's ideas and imagery throughout his life. His eccentric behavior and his eerie paintings made him the best known of the group.
आज भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज निर्देशक और निर्माता रमेश सिप्पी का जन्मदिन है। उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में 1953 में आई फिल्म शहनशाह में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। निर्देशन में उतरने से पहले उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म 1971 में अंदाज आई थी, जो एक बड़ी हिट रही। इसके बाद उन्होंने 1972 में सीता और गीता बनाई। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये गीत।
हवा के साथ साथ,
अरे रे रे,
घटा के संग संग,
संभालना।
हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल,
मुझे के साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल।
1975 में आई उनकी फिल्म शोले भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इसे 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिला। आइए सुनते हैं शोले फिल्म से उनका ये फेमस डायलॉग।
कितने आदमी थे
सरदार? 2 आदमी थे।
दो आदमी, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों?
उन्होंने शान, शक्ति और सागर जैसी कई प्रतिष्ठित फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित लोकप्रिय टीवी शो बुनियाद का भी निर्देशन किया, जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। भारत सरकार द्वारा 2013 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें 2020 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा गया।
Yes, and I'd like to add here, Akarshita, that Ramesh Sippy in 2017 has founded the Ramesh Sippy Academy of Cinema and Entertainment in Mumbai also. And moving on, Ishwar Chandra Gupta passed away on this day in 1859. He was a Bengali poet and writer. Gupta was born in Kachrapara in Bengal. He was brought up in his uncle's house after the death of his mother. Gupta spent most of his childhood in Kolkata. At that time, poets were named Kobiwala, and the Kobiwalas were not so civilized in language. But Ishwar Chandra Gupta created a different style of poetry. He started the newspaper Samvad Prabhakar with Jogendra Mohan Tagore on January 28, 1831, which finally became a daily on June 4, 1839. Many Bengali writers of the 19th century started their careers with that magazine. He bought a modern era of poetry in Bengali, and he did not describe the life of gods and goddesses, but the daily life of human beings. And he also wrote biographies of many Bengali poets and musicians. And also John Renart was born on this day in 1910, known by his Romani nickname Django. He was a Belgian-born Romani jazz guitarist and composer who lived most of his life in France. He was one of the first major jazz talents to emerge in Europe and has been hailed as one of his most significant exponents. Let's listen in to his hit composition, Daphne.
आज पुण्यतिथि है भारतीय समाज सेवी, गांधी जी के विचारों के अनुयायी और लेखक अमीय कुमार दास की। असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान वे कई बार जेल भी गए। वे संविधान सभा के सदस्य भी थे। 1949 में उन्होंने जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अमित कुमार दास अच्छे लेखक थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का असमिया भाषा में अनुवाद भी किया। गांधी जी से संबंधित कुछ अन्य ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की और 1963 में भारत सरकार ने उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया।
Yes, and also Edouard Manet was born on this day in 1832. He was a French modernist painter. He was one of the first 19th century artists to paint modern life, as well as a pivotal figure in the transition from realism to impressionism. Born into an upper-class household with strong political connections, Manet rejected the naval career originally envisioned for him. He became engrossed in the world of painting. His early masterworks, The Luncheon on the Grass and Olympia, premiering in 1863 and 65 respectively, caused great controversy with both critics and the Academy of Fine Arts, but soon were praised by progressive artists as a breakthrough acts to the new style, Impressionism.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।